ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। रोज सवेरे सवेरे मीठा मीठा बाबा, मीठी मीठी बातें सुनाकर, मीठे मीठे बच्चे बोलकर मीठा बना देता है। सबसे मीठा कौन है? बाबा। बाबा जैसा मीठा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाबा को कहते वो सैक्रीन है। चाय के अंदर चीनी डालो तो दो चम्मच डालनी पड़ती है ना, और सैक्रीन डालो तो एक दो बूंदों में ही मीठा हो जाता है। तो बाबा भी रोज सवेरे सवेरे सारे ज्ञान का सार सुनाते हैं। कहाँ सुनाते हैं? मधुबन में। वो लोग तो मधुबन वृंदावन को कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा है वो वृंदावन कहने से वहां कृष्ण का फोटो रख दिया। लोग जाते हैं वृंदावन, कृष्ण की फोटो मूर्ति देखकर आ जाते हैं, लेकिन वहां कृष्ण मिलता तो नहीं है, मुरली सुनाई तो नहीं पड़ती। ये सच्चा वृंदावन है या ये सच्चा मधुबन है जहां बाप आकर अपने बच्चों से मिलते हैं और मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं। दूसरा, इस मुरली से हम क्या सीखते हैं? नई राजधानी कैसे चलानी है वो सीखते हैं, क्योंकि नई दुनिया में वजीर तो होंगे नहीं जो राय लेनी पड़े। बाबा कहे अगर राय ले तो माना जाएगा बुद्धि कमजोर है, इसलिए वहां वजीर नहीं होते। तुमको अभी जो श्रीमत मिलती है उस आधार से वो नई दुनिया में कायम रहती है, अर्थात नई दुनिया का कारोबार भी अभी की श्रीमत के आधार से चलेगा। तीसरा, बाबा ने बताया माया का वंडर कौन सा है। माया का वंडर है बार बार याद भुला देती है। बाबा कहे ऐसा नहीं कि तुम मेरे बने हो तो तुम्हें याद जम जाएगी, अगर ऐसा है तो तुम पुरुषार्थ क्या करोगे, अंत तक जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। और चौथी बात सुनाई, कहते हैं सीता अग्नि से पार हुई, कहते हैं ना उसने अपनी पवित्रता का सबूत दिया। वास्तव में एक सीता को तो पार नहीं होना, तुम सब सीताएं अभी शोक वाटिका में हो, रावण की जेल में हो, तुम सबको योग अग्नि से पार होकर पावन बनना है। तो जब आपने योग अग्नि बोला तो उन्होंने अग्नि का मीनिंग ये निकाला कि सीता अग्नि से पार हुई। और लास्ट में बताया तुम सब हो सेना, और क्या हो, पायलट। एक पायलट हवाई जहाज का होता है और दूसरा पायलट किसको बोलते हैं, जो वीवीआईपी का काफिला जाता है ना उसके आगे एक गाड़ी जाती है सायरन बजाती बजाती, वो जहां जाएगा आगे आगे पूरा काफिला उसको फॉलो करेगा। तो बाबा कहे तुमको भी सबको रास्ता बताना है, तुम्हें संशय नहीं आना चाहिए। विनाश काले जो प्रीत बुद्धि जितना होगा उतना उच्च पद मिलेगा, उसका थर्मामीटर है उच्च पद का जितना प्रीत बुद्धि होंगे। तो अब सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। आज है 21/8/2026, आज फ्राइडे है। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। सब बातें छोड़ो, बस एक याद का काम। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो, श्रीमत से कौन से संस्कार भर रहे हैं? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहां आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं, राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। आज गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, और तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, सब कुछ हमारा एक बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी बाप ही कह सकते, और तो कोई मीठा मीठा कौन कहेगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। और कोई कोई नहीं, इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, अभी सब इसी स्मृति में बैठे हैं ना, हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा हमें मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। जानते हो, बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हो। अभी समझते हैं, सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। जब साकार में बाबा थे तो बाबा के सामने आकर के सुनते थे, और फिर मुरली छपी हुई पढ़ो या कैसेट में सुनो, फर्क तो पड़ता है ना। अभी भी क्लास में जाकर आप मुरली सुनो और मोबाइल में सुनो, फर्क होता है ना। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है, भक्ति मार्ग में भी मधुबन अक्षर मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। अभी कृष्ण है कहाँ? कृष्ण खुद ही ये मुरली सुनकर के अपने को कृष्ण बना रहा। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं, तो सच्चा मधुबन ये है। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है कि बाप आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वर्षा देते हैं। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है। वो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, उसमें दान पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, भक्ति करेंगे, वो एक विशेष मानते हैं। और ये हमारा पूरा संगम युग ही विशेष है, पुरुषोत्तम है, जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं, इसलिए ये पुरुषोत्तम युग है। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम बनते हैं, उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। ये उत्तम का ऑपोजिट कनिष्ठ। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। परम धाम में अकेली आत्मा है, बिंदु है, तो भी पार्ट नहीं प्ले करेगी, और आत्मा नहीं है केवल शरीर पड़ा है तो भी पार्ट प्ले नहीं करेगा। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया वा शांति धाम में रहने वाली हैं। ये किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते। इतने गुरुओं के पास जाओ, कितने भी सत्संग सुनो, उसमें ये क्लियर नहीं बताते हैं। उसमें आत्मा शब्द आता है, ब्रह्म तत्व भी नाम आता है, लेकिन ये क्लियर परिचय कोई नहीं देता कि तुम आत्मा हो और परम धाम शांति धाम की रहने वाली हो। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? हम आएंगे, फिर नंबर वार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। उस ड्रामा में भी थोड़े थोड़े आते रहते हैं ना, लास्ट तक आते रहते हैं। किसी का तो बहुत शॉर्ट पार्ट भी होता है। तो यहाँ भी पहले हम आएंगे, फिर धीरे धीरे सब और धर्म वाले भी आते जाएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं, सब इकट्ठे कब होते हैं एक्टर्स? जब नाटक पूरा होता है। तो अभी इतने इकट्ठे हो गए हैं, माना पूरा होने का टाइम है ना। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। बाप का बातें लास्ट में सबको ले जाना होता है, ड्रामा खत्म होने वाला होता है, तब एक्टर्स को याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, चलो अब घर। हमें पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। जब क्लास में जाते हो, मुरली सुनते हो तो मजा आता है ना, फ्रेश हो जाते हैं, वो नशा चढ़ जाता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। पढ़ लेंगे, लेकिन जो मजा क्लास में आता है वो अकेले पढ़ने में नहीं आता है। यहाँ सन्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो भारत क्या था? भारत पहले क्या था? गॉड गॉडेस का स्थान था। सब गॉड गॉडेस माना देवी देवताएं रहते थे। अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर, इतनी मूर्तियां हैं, इतने फोटोज हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं आता है कि जरूर कोई समय ये लोग होकर गए होंगे, कभी यहाँ धरती पर होंगे, तब इतने फोटो हैं, इतनी मूर्तियां बनती है। पहले पहले हम देवी देवता थे, अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? अपने पार्ट को तो याद करेंगे ना कि हम क्या थे, सबको याद है ना कि भूल गए हो? बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया है, बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम ही देवता थे, तुमने ही पार्ट बजाया था, तुम ही गॉड गॉडेस थे। ये ड्रामा है, नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, सबको याद है ना हम कौन सी आत्माएं हैं, गोल्डन एज वाली आत्माएं हैं। सतयुग आदि में तुम्हें आए थे पार्ट बजाने, देखो बाबा स्मृति दिला रहे हैं, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। आ जाओ सभी उसी पोजीशन में, बाबा स्मृति दिला रहे हैं, तो सब महाराजा महारानी थे। अभी तो राजधानी है नहीं, अब तुम सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? कि हम राजाई कैसे चलाएंगे, वहां वजीर होते नहीं, राय लेने वाले की दरकार नहीं, वहां वकील जज कोई नहीं होगा, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। वो देवी देवता ही इतने टैलेंटेड हो जाते हैं श्रीमत से, वो श्रीमत के अनुसार पूरी राजधानी चलाएंगे। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है, तो अभी हम श्रीमत अनुसार चलेंगे तो सतयुग में उसी अनुसार राज कारोबार चलाएंगे। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, फ्रेश है ना सभी? अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टॉकी बने हो, वाचा में आते हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। आत्मा वहां सतयुग में होगी, साइलेंस में होगी, मूवी में होगी, सबका मौन होगा। जब यहां आते हैं तो पार्ट बजाते हैं, तो वाचा में आते हैं, टॉकी में आते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। इसलिए मास्टर कहते हैं ना, मास्टर ज्ञान सागर। बाबा ज्ञान के सागर हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वो बजाती रहती है, और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर कब से शुरू हुआ? पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। जैसे द्वापर स्टार्ट हुआ तो प्योरिटी की डिग्री कम तो हो ही जाती है ना, थोड़ा तो फर्क पड़ ही जाता है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। तुम नया मकान बनाओ, नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। एक मास में फर्क पड़ जाता है मकान में, कुछ तो कहेंगे ना, भाई एक मास पुराना है, बोलने में तो आएगा, कहेंगे कब से रहने आए हो, आज तो, कह नहीं नहीं एक मास हो गया। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है, कोई भी पुरुषार्थ करके नंबर ले सकता है। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, बाबा ने खुली ऑफर रखी हुई है। बाप जानते हैं क्यों फर्क नहीं है बाबा के पास, क्योंकि बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा के सामने कौन भाई है, कौन बहन है, कौन किस धर्म वाला है, कौन किस भाषा वाला है, बाबा की नजरों में सारे विश्व की आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहता मेरे पास कोई फर्क नहीं है। आत्मा हरेक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, जिसको बाप पढ़ाते हैं बाप वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों, कितना प्यार से बोलता है बाबा, इतना प्यार से समझाता है, ऐसा प्यार से और कौन समझाएगा, और कोई सत्संग में इतना प्यार से बताएगा, कोई किससे कहानियां सुनाएंगे। बाबा कितना प्यार से बात करते हैं, लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पार्ट नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो, आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी क्या है, पतित दुनिया, इसमें एक भी पावन नहीं। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है, सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। मच्छरों की कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं। तो बाबा कहते हैं जो लास्ट में आत्माएं आएंगी उसके कोई वैल्यू नहीं, वो जाएंगे भी मच्छरों सदृश। जैसे मच्छर आया लाइट का, लाइट बंद करो मर जाएगा, कोई वैल्यू नहीं। ऐसे लास्ट आने वाली आत्माएं कोई वैल्यू नहीं। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी? जो लास्ट में आत्माएं परम धाम से आएंगी, कुछ समय के लिए आएंगी, उसकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तो वो कौन है? नशे से कहो वो हम हैं। तो वैल्यूबल कौन है? हम हैं। वो लास्ट आने वालों की कोई वैल्यू नहीं। नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो, आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, बरोबर तुम समझते हो, बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मनिश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी, भले वो हमारा बाप है, थोड़ी लिफ्ट जरूर देगा, लेकिन कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। राजाई पाना कितनी बड़ा पद है। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है, ये माया का वंडर है। कौन सा वंडर बताया? माया का वंडर कौन सा है? जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। अभी सोचो मैं एक घंटा एकदम बाबा की याद में बैठूंगा, तुरंत और कुछ याद आ जाएगा। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। वो कौन उपाय रचेगा? हमको खुद ही रचना पड़ेगा कि कैसे हमारी याद का कनेक्शन टूटे नहीं, लिंक लगी रहे। इसके लिए हमें खुद ही उपाय रचना होगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? कहते हैं अभी हम तो बाबा के हैं ही है ना, बाबा के तो बन गए। बाबा कहते ऐसे नहीं, ऐसा नहीं मेरा बना तो याद जम गई। नहीं, अगर ऐसा हो तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसा नहीं क्या करें, हम घर में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, याद भूल जाती है, याद में नहीं रह सकते। मधुबन में आते हैं तब तो याद रहती है। नहीं, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पुरुषार्थ भी करना है। सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर, बाप को याद करो। कितनी छोटी बात है। सिर्फ आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। कहते हैं ना, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। लेकिन इस समय हमारे सारे संबंध एक से है। भक्ति मार्ग में गाते हैं लेकिन सारे संबंध जोड़ते थोड़े ही हैं। इस समय हम बाबा के बने, सारे संबंध बाबा से जोड़ दिए। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है, एक मैं ही सैक्रीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़, बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। इतनी मीठी भाषा में बाबा ने सारा ज्ञान बता दिया, पूरा धारणा का क्लास करा दिया एक शब्द में। सब बातें छोड़, मीठी सैक्रीन बन जाओ। ये होमवर्क है आज का। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। अभी जो तमो प्रधान बन गई आत्मा, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज। सहज है ना? बाबा कहता है सहज है, मुश्किल नहीं है। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है, एक सेकंड में सब कुछ भुला दो, सारी स्लेट को क्लीन कर दो और एक में टिक जाओ तो माला माल हो जाओ। इस ड्रामा में हरेक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, क्योंकि हम आदि से आते हैं, शुरू से आते हैं। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलता है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुप चुप कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? शॉर्ट में बता दिया कि इन सब का क्या होगा। हिसाब किताब चुक चुक कर शांति धाम में बैठ जाएंगे, बाकी हम ही सुख धाम में जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे हिसाब किताब चुक चुक करेंगे, बाबा कहते हैं उस डिटेल में नहीं जाओ, बस एक ही याद में रह जाओ। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुप चुप कर चली जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग रूपी आग से पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीरियल बनाते हैं ना, ड्रामा बनाते हैं रामायण का, तो उसमें भी दिखाते हैं, वो सीरियल में भी दिखाएंगे। सीता को वो अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो आग से पार हो गई, उसने अपना पवित्रता का सबूत दिया। कहते हैं वो आग से पार हो गई तो पवित्र हो गई, प्योर हो गई। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है, हम सब सीताएं बैठी हैं ना यहाँ, सब आत्मा रूपी सीताएं हैं बाबा की, तो सबको योग अग्नि से पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से हम कहते हैं योग अग्नि, तो बाबा कहते हैं अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहां योग अग्नि कहां वो आत्मा। परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होती है। रात दिन का फर्क है। वो अग्नि दिखाते, ये योग अग्नि है, तो कितना फर्क है। लेकिन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अग्नि अक्षर को पकड़कर सीता को उस आग में दिखाया। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्ठा समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। तो बाबा ने आज कितने ज्ञान रत्न दिए, सबकी झोली भरपूर हो गई ना। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। बाबा इतने रत्न दे रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से संशय क्यों आता है? देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। बाबा जो बताते हैं उसमें भी क्वेश्चन होता है। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं है। अब संशय होगा तो वो धंधा कैसे करेंगे? कोई भी धंधा करने के लिए, उस धंधे में सफल होने के लिए उसमें फेथ चाहिए कि ये मेरा राइट है, इसी में मेरी कमाई है, तब तो बिजनेस सक्सेस होता है ना। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये अंडरलाइन कर लो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, कुछ नहीं। सब बातें खत्म करके एक बाप को याद करना है। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो, किसी को बोलो तुम पतित हो तो क्या होगा? बिगड़ पड़ेंगे, नाराज हो जाएंगे, तुम हमको पतित बोलते हो। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण देखो, ये राम सीता देखो, सब गृहस्थी थे, तो हम भी गृहस्थी हुए तो क्या हुआ। लेकिन ये नहीं आइडिया है कि वो पवित्र गृहस्थ व्यवहार था, वो दिव्य गुण वाले थे, वो पावन थे। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वहां कोई भी विकार होते नहीं। वो है शिवालय, वो शिव ने स्थापित किया हुआ है। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया, फिर बच्चे को गदी देंगे, उसका चेला बनेगा या उसका बेटा बनेगा, परंपरा चलाएगा। तो वो गुरु, चलो उसने इतनी सिद्धि प्राप्त की, वो चला गया, अब बेटे को बिठाया, तो कैसे सद्गति देखा सबको। वो कैसे ज्ञान देगा? अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे? सर्व का सद्गति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सद्गति। पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते हैं। बहुत लंबा समय सुख भोगते हैं, पावन बनते हैं, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू होता है, फिर बाद में उतरते हैं। सतो प्रदान से सतो रजो तमो, ये तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, अब आ जाओ अपनी स्मृति में, तुम क्या क्या हो? ज्ञान के इस चक्र को जान गए हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। वो लाइट हाउस होता है, वो समुद्र में सबको शिप होते हैं, उसको रास्ता बताता है। तुम सब सेना हो, एक बताया लाइट हाउस हो, दूसरा बताया तुम सब सेना हो। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, पतित पावन एक ही निराकार बाप है, ये सबको बताओ। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। शिव भगवानुवाच्य, भगवानुवाच्य क्या है? मन मना भव, एक ही शब्द में सारे ज्ञान का सार। शिव भगवानुवाच्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। दे अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठा मीठा बाबा, और हमको भी होमवर्क दिया, तुमको मीठा स्क्रीन बन जाओ, सब बातें छोड़ दो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। वरदान आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव, उसका क्लेरिफिकेशन है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के साथ सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे, ये कब होगा? इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। कितना बड़ा होमवर्क है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सारे झमेले से दूर, बोला ना, सभी बातों से दूर। तो उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ये अव्यक्त इशारे इस महीने का टॉपिक चल रहा है। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, बाबा जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती, उनकी याद वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।